I'm very fortunate tonight for this opportunity to speak to all of you in this great and holy place of Kurukshetra. Kurukshetra, the place where Sri Bhagavad Gita was originally spoken by Lord Sri Krishna to Arjuna for the liberation of the entire world. Bhagavad Gita was spoken to present the highest truth of pure unalloyed devotion in the mood of absolute surrender to the lotus feet of Sri Krishna. This precious opportunity tonight, we have come to glorify His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who brought the sacred teachings of Gita to the entire world. His translation of Bhagavad Gita, as it is, has been brought to practically every town and every village on the planet Earth, and has transformed the lives of millions of fortunate souls. Just as King Bhagirathi performed great tapasya to bring the holy river Ganges to this earth for the purification of the planet, Srila Prabhupada performed tapasya that we have not seen in all of history, to bring the sacred river Ganges of pure bhakti to every town and village on the planet Earth. Srila Prabhupada's personality of Godhead was stolen for His own personal sense enjoyment. The Bhagavad Gita teaches us, Vahoktaram jagatapasam sarva loka maheshwaram suhridam sarva bhutanam yatva mam shantim vichchati, that everything is the property of Krishna, and every living entity is the eternal servant of Krishna, and all living beings and all things are meant for Krishna's enjoyment. But the ravanas of this material creation have stolen the minds of practically the entire population of the earth. And now the whole population is trying to exploit the resources of Krishna and exploit the various population of Krishna for their own personal sense enjoyment. This world is under the grip of Ravana. But Srila Prabhupada explained that he came as the representative of Sri Ram to reclaim the property of Ram, to reclaim all the lost souls and bring them back to the lotus feet of Sri Ram. Or in other words, to bring Sita back to Ram. And Srila Prabhupada looked at all of us and he told us, and all Ram has given me is you monkeys to help me. But Srila Prabhupada, with his greatness, by his divine grace, he has transformed monkeys into Vaishnavas, surrendered souls, doing the work of Lord Sri Krishna, doing the work of Ram, wherever they may go. Srila Prabhupada, at the age of 70 years old, when practically everyone is settling down in retirement, he took the order of his spiritual master to spread the pure teachings of Gita throughout the world with no money, with no help. He sailed across the Atlantic Ocean in a cargo ship, suffering several heart attacks. And when he arrived in the most sinful, the most materialistic place in all of the world, New York City, he lived unknown to anyone, suffering from cold, from old age, but with great determination, he understood that the medicine of the teaching of the Gita is the only thing that could heal the disease of the suffering people of this world. So he persisted. And gradually, with faith in the teachings of the Gita and the holy name of Krishna, he gradually implanted this message in the hearts of his disciples. One time, a person asked Srila Prabhupada, "You are a great yogi, a great saint. Can you show me a miracle?" And Srila Prabhupada pointed to us, his beginning disciples, said, "These young people, previously they were addicted to every type of sinful activity, illicit sex, intoxication, gambling, meat eating. They had no culture. They had no understanding of the purpose of life or of God. And now they have transformed into Vaishnavas, living pure lives in utter dedication unto the Supreme Personality of Godhead. This transformation of their hearts is the miracle that I have come to perform." And Srila Prabhupada's great miracle is continuing to be performed throughout the world by his divine grace. Because he lives forever through his books, through his instructions, and through the hearts of everyone he has transformed. Srila Prabhupada came to give the essence of the teachings of the Gita. That we should not be diverted from the real path of life. There is unlimited propaganda for material sense enjoyment through the production of science and technology and so-called higher education. But the teachings of the Gita is the supreme education. It is the supreme science, and it is the supreme hope for all humanity to bring about real peace and ultimately supreme salvation of pure unalloyed devotion to the Supreme Lord. And the essence of Gita is to live by the teachings of Krishna, to always remember Krishna. Man mana bhava mad bhakto mad yajin nam namaskuru mam evaishashi satyam te prati jani priyoshime. And Srila Prabhupada came with Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's simple process of always remembering Krishna. By regularly hearing Gita and by chanting the holy names. Because the name of Krishna is absolutely non-different from Krishna. And when we associate with Krishna's devotees and in that company sincerely chant the holy names, we can always be in the divine presence of Krishna, just as Arjuna was in the divine presence of Krishna here in Kurukshetra. This is the Yuga Dharma. And it is through Srila Prabhupada's unflinching faith in the teachings of Gita and the transcendental power of the holy name that he has performed a miracle that this world has never seen. So it is our humble request to all of you, kindly receive Srila Prabhupada's mercy by receiving the name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. There are many names of the Lord. There are many mantras. But this Hare Krishna mantra is called the Maha Mantra. And in the age of Kali Yuga, it is the most perfect process, the most perfect medicine for all the diseases that are creating suffering within this world. So let us take Srila Prabhupada's mercy. Let us take this Hare Krishna Maha Mantra. And let us chant always as our life and soul. please, everyone, very loudly.
सब लोग जोर से बोलिए.
In glorification of Srila Prabhupada, in his coming 100th birth anniversary, let us offer him what was most pleasing. The loud chanting of the holy name, meant for the liberation of all. Everyone, please raise your arms.
सब लोग हाथ ऊपर करिए. सब लोग कृपया साथ में बोलिए.
Very loudly.
सब बड़े जोर से बोलिए, पूरी शक्ति से.
हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा.
कृष्णा कृष्णा.
कृष्णा कृष्णा. और जोर से.
हरे हरे.
हरे हरे.
हरे राम.
हरे राम.
हरे राम.
हरे राम.
राम राम.
राम राम.
हरे हरे.
हरे हरे.
श्रील प्रभुपाद की
जय. परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा. श्री लोकनाथ महाराज ये भी एक बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, वैष्णव हैं, और ये भी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के एक श्रेष्ठ सन्यासी एवं गुरु हैं. इन्होंने जो पद यात्रा है, जो चलते हुए श्री गौरंग महाप्रभु के संदेश का प्रचार है, वो विश्व के 100 से ज्यादा देशों में इन्होंने किया है. और जो श्रील प्रभुपाद जी के जो जन्म शताब्दी का अवसर मनाया जा रहा है, उनके ये एक प्रमुख कोऑर्डिनेटर हैं, और ये जो है बहुत अपने कीर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं. अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया 10 मिनट के लिए श्री प्रभुपाद जी के गुणगान करें.
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमाम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने. नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की, कुरुक्षेत्र धाम की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री कृष्ण अर्जुन की, निताय गौर प्रेमानंदे. निताय गौर प्रेमानंदे. निताय गौर प्रेमानंदे. धन्यवाद. आप यहां आज के हरे कृष्ण महोत्सव, कल रथ यात्रा हुई और आज हरे कृष्ण महोत्सव पंडाल प्रोग्राम क्या हो रहा है, इसमें आप बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हो, इसलिए हम आप सभी के अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से हम आपके बहुत आभार मानना चाहेंगे. अब यह ग्लोरिफिकेशन ऑफ प्रभुपाद या प्रभुपाद का गुणगान का कार्यक्रम हो रहा है. प्रभुपाद के कई शिष्य सन्यासी वृंद आपको प्रभुपाद का गुणगान सुना रहे हैं. आपने गोपाल कृष्ण महाराज और राधानाथ महाराज से सुना कि अंतर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत संस्था, हरे कृष्ण संस्था, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जन्म शताब्दी की तैयारी कर रही है. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जन्म शताब्दी कब मनाई जाएगी, कितने लोग जानते हैं, और किसी को पूछना नहीं. आप बाजू में तो नास्क अदर्स. आप में से कितने लोग जानते हैं प्रभुपाद की जन्म शताब्दी कौन से वर्ष मनाई जाएगी? विच ईयर? हाउ मेनी ऑफ यू नो? जो जानते हैं हाथ ऊपर करें. ओके. कई जानते हैं, कई सारे नहीं जानते हैं, ज्यादातर जानते ही नहीं है। प्रभुपाद को मानते हैं लेकिन उनकी जन्म शताब्दी कब है नहीं जानते। तो प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता में हुआ, 1896 की बात है, 1896। तो फिर आप बताइए उनकी जन्म शताब्दी कब होगी? यस, 1996 मतलब और कितने सालों के बाद? केवल कितने साल बचे हैं? दो नहीं, केवल एक साल बचा हुआ है। किसने कहा दो साल? और कोई किसी ने कहा कि एक साल भी नहीं बचा है? कितना? 7 मंथ। क्या हुआ? कुछ ही महीने बाकी है और 1 जनवरी 96 प्रारंभ होगा और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संस्था श्रील प्रभुपाद का जन्म शताब्दी का महोत्सव प्रारंभ करेगी। ये कार्यक्रम आपके नगर में कुरुक्षेत्र में भी होगा। प्रभुपाद जन्मे कलकत्ता में एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में। प्रभुपाद जब बालक थे तो राधा गोविंद भगवान के दर्शन के लिए, छोटे ही बालक थे, और मंदिर में जाके वहां के पुजारी जब आरती उतारते थे प्रभुपाद वहां खड़े होके भगवान का दर्शन करते ही रहते थे। प्रभुपाद जी के पिताजी ने उनको मृदंग दे दिया। प्रभुपाद जब छोटे बालक थे तो मृदंग कैसे बजाना सिखाया प्रभुपाद जी ने, हाँ प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जब छोटे थे तो कलदेशी रथ यात्रा हुई तो प्रभुपाद अपने मित्रों के साथ इकट्ठे होकर कलकत्ता के गलियों में रथ यात्रा का उत्सव मनाते थे। उनका रथ तो, वो छोटे थे तो उनका रथ भी छोटा ही हुआ करता था और छोटे बालक उनके मित्र रथ को खींचते थे। रथ यात्रा के अंत में प्रभुपाद प्रसाद वितरण करते थे। प्रभुपाद जी को उनके पिताजी ने राधा कृष्ण के छोटे विग्रह मूर्तियां दे दी। प्रभुपाद उन विग्रहों की पूजा अर्चना किया करते थे। इस तरह का प्रभुपाद जी का बचपन रहा। प्रभुपाद जब भी उठते थे तो उनके पिताजी घंटी बजा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। इस प्रकार का दृश्य प्रभुपाद जब बालक ही थे तो देखते थे और सुनते थे। प्रभुपाद कलकत्ता में कॉलेज में गए, ग्रेजुएट हुए, गृहस्थ भी बने। 1922 की बात है, कलकत्ता में ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, जो उनके आगे होने वाले गुरु थे, उनको मिले। 1922 की बात है, प्रभुपाद अपने एक मित्र के साथ जिस कमरे में भक्ति सिद्धांत जी बैठे थे उस कमरे में प्रवेश कर रहे थे। प्रभुपाद जी बैठे, उन्होंने प्रणाम किया और बैठने ही जा रहे थे सीधे प्रणाम करने के बाद, तो भक्ति सिद्धांत जी ने प्रभुपाद की तरफ, उस वक्त उनका नाम था अभय चरण डे की तरफ उंगली करके उन्होंने कहा, तुमको पाश्चात्य देश में जाके अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करना चाहिए, तुम बड़े बुद्धिमान लगते हो, पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी, अभी तक परिचय भी नहीं हुआ, ये कौन व्यक्ति है? तो प्रभुपाद जैसे ही बैठते हैं प्रणाम करने के बाद तो भक्ति सिद्धांत जी का तुम, तो ये जो आदेश रहा अपने गुरु का, इस आदेश को भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कभी नहीं भूले। आगे चल के 1933 की बात है। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनकी दीक्षा हुई, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको अपना शिष्य बनाया। ये दीक्षा हुई अलाहाबाद में। प्रभुपाद वहां कई सालों तक रहे। 1944 की बात है, 1944 प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड पत्रिका आपने देखी होगी, सुना होगा नाम। ये बैक टू गॉडहेड पत्रिका का संपादन प्रभुपाद जी ने 1944 में किया। प्रभुपाद जब भक्ति सिद्धांत जी को मिले राधाकुंड के तट पर वृंदावन में, तो प्रभु भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि तुमको कभी अगर धन राशि प्राप्त होती है तो उस धन राशि का तुम ग्रंथों के छपाई और वितरण और प्रचार के लिए करो। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके पास तो ज्यादा धन नहीं था, तो जो भी धन बचता था उसका उपयोग वो बैक टू गॉडहेड पत्रिका के वितरण के लिए, प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना उन्होंने प्रारंभ किया। आगे चल के वैसे प्रभुपाद गौड़ीय मठ से संबंधित थे, एक गौड़ीय वैष्णव थे। गृहस्थ होने के नाते वो गुरु के आश्रम में रहना केवल ब्रह्मचारी और सन्यासी रहा करते थे। वो स्वयं गृहस्थ थे तो अपने घर में ही रहते थे, तो समय समय पर गौड़ीय मठ में जाते थे दर्शन के लिए, कथा के लिए, परिक्रमाओं के लिए, और फिर घर लौटते थे। कई बार प्रभुपाद गए और कई बार प्रभुपाद घर लौट आए। घर लौटने का उनका उद्देश्य ये रहता था कि घर के जो सदस्य है, उनकी पत्नी है, प्रभुपाद एक समय गृहस्थ रहे, उनकी पत्नी थी और बच्चे थे, और उनको कृष्ण भावना भावित, कृष्ण कॉन्शियस बनाना चाहते थे। कुछ तो धार्मिकता थी लेकिन वो पूरे कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए तैयार नहीं थे। गोपाल कृष्ण महाराज बताए कि प्रभुपाद के सारे अनुयायी, हम सारे शिष्य जो है देश विदेश में, हम चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन प्रभुपाद की धर्म पत्नी उसने चाय नहीं छोड़ी थी। तो एक समय की बात है, प्रभुपाद घर में ही थे, उनकी धर्मपत्नी बाजार में गई, क्या लेके गई, एक मोटे ग्रंथ को बाजार में लेके गई और उसने उस ग्रंथ को बेच दिया तोल के। क्या कहते हैं, कबाड़ी लोग आते हैं, रद्दी है, रद्दी, रद्दी के रूप में उसको बेच दिया, और उसके बदले में चाय की पत्ती, टी बिस्किट्स उसमें लिखा है, खरीद लिया। तो प्रभुपाद जी को जो पता चला कि धर्मपत्नी ने ये कौन सा कार्य किया, और बहुत गुस्से में आ गए, और प्रभुपाद जी ने पूछा अपने धर्मपत्नी से, क्या तुम चाय चाहती हो कि मुझे चाहती हो, यू वॉन्ट टी और मी? तो धर्मपत्नी ने कहा कि आई वॉन्ट टी, मुझे तो चाय चाहिए। ये सुनते ही प्रभुपाद जी ने उसी क्षण घर को त्यागा और सीधे झांसी पहुंचे और दोबारा कभी घर नहीं लौटे। वहां पर उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज नाम की संस्था की स्थापना का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके पीछे बड़ा लंबा इतिहास है क्यों नहीं हुआ। प्रभुपाद वहां से मथुरा आए, अब तो वो वानप्रस्थी बन चुके थे, वो आश्रम में रहने लगे और जो गौड़ीय वैष्णव थे उनकी सहायता करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने ग्रंथ भी लिखे, श्री शोपनिषद पर उन्होंने अपनी टीका लिखी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा नाम का ग्रंथ भी लिखा, और भी छोटे ग्रंथ लिखे, और उसका प्रकाशन किया और वितरण भी प्रारंभ किया। 1959 प्रभुपाद जी ने सन्यास त्रिदंड धारण किया, सन्यासी बने, ब्रह्मचारी थे एक समय, आगे चल के गृहस्थ बने, वानप्रस्थी भी थे और अंत में उन्होंने सन्यास अपनाया, सन्यास ध्यान किया। धीरे धीरे प्रभुपाद वैसे विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, उनके गुरु का जो आदेश था तुम विदेश में जाकर अपने धर्म का प्रचार करो, भगवद गीता का प्रचार करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रचार करो। इस बात को प्रभुपाद कभी नहीं भूले। धीरे धीरे प्रभुपाद वो सोच रहे थे कि मुझे अगर विदेश में जाना है मैं वहां भाषण भी दे सकता हूं, लेकिन भाषण सुनने के बाद धीरे धीरे उस भाषण को लोग भूल भी जाएंगे, तो साथ में मैं जाऊंगा तो साथ में कुछ ग्रंथ मैं लेके विदेश जाना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने भागवत पर अपनी टीका लिखी, भागवत को समझाया, तात्पर्य लिखे। प्रथम स्कंद तैयार हुआ, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और डालमिया परिवार, आप दिल्ली में जानते हो, उनकी सहायता से उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम, थ्री वॉल्यूम, प्रथम स्कंद के तीन भाग उन्होंने छपे, ग्रंथ तैयार तो हो गए। लेकिन अब विदेश जाने के लिए उनके पास एयर फेयर, कोई हवाई जहाज का टिकट नहीं था, तो सुमती मुरारजी जो बंबई की रही, सिंधिया नेविगेशन कंपनी, जिसको एक समय प्रभुपाद कुरुक्षेत्र में ही मिले थे, उसको जाके बंबई में मिले। प्रभुपाद जी ने कहा मैं विदेश जाना चाहता हूं। सुमती मुरारजी ने कहा तुम तो बूढ़े हो गए, तुम तो रास्ते में मर जाओगे, इसलिए अच्छा है कि तुम विदेश मत जाना, तुम तो वृंदावन जाके वही अपना भजन करो। प्रभुपाद जी ने इस बात को नहीं सुना, क्योंकि उनके गुरु का आदेश था विदेश जाना था, प्रचार करना था। तो अंत में उनको टिकट दे दिया और सुमती मुरारजी की सहायता से वे अमेरिका गए। रास्ते में कई हार्ट अटैक्स और सी सिकनेस, कई कठिनाइयां उनको महसूस करनी पड़ी। अंत में बॉस्टन और न्यूयॉर्क प्रभुपाद पहुंच गए, वहां अकेले थे। प्रभुपाद की उम्र उस वक्त 69-70 ईयर्स की थी, जेब में पैसे नहीं थे, मित्र भी नहीं थे। प्रभुपाद प्रैक्टिकली पार्क में बेंच पर बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, आने जाने वाले लोगों को प्रचार करते थे और कीर्तन सुनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने एक किराए का जगह ले लिया और वहां सप्ताह में दो बार उन्होंने भगवत गीता का प्रवचन शुरू किया। और यहाँ कुछ भक्त बैठे हैं, और सारे तो यहाँ भक्त नहीं आए, कुछ ही तो भक्त यहाँ पहुंचे, उसमें से तो कई भक्त अब जो इस्कान के लीडर्स हैं वो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी को 65-66 में मिले। धीरे धीरे उनके वे अनुयायी बने। प्रभुपाद जी ने पहली बार उनको ये चार नियम बताए, उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनका साथ देना उन्होंने स्वीकार कर लिया। और उनकी सहायता से प्रभुपाद जी ने धीरे धीरे अमेरिका में, कनाडा, फिर अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया जाके, भारत में आके भगवत गीता का खूब प्रचार किया, अपने भागवत धर्म का प्रचार किया, गौ रक्षा की, यहां गौ रक्षा का प्रयास हो रहा है। लेकिन विदेश में जहां लोग गाय का खून पीते थे, गाय का भक्षण करते थे, वहां के लोगों ने गाय की रक्षा और गौ पूजन शुरू किया, तुलसी वंदना शुरू की, राधा कृष्ण विग्रह, सीताराम, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की मूर्ति की स्थापना हुई, गुरुकुल की स्थापना हुई, संस्कृत का अध्ययन शुरू हुआ। और इस प्रकार विश्व भर में ये कृष्ण भावना जो है, भागवत धर्म है, इसका प्रचार बड़े सफलतापूर्वक उन्होंने प्रचार किया। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, 77 नवंबर में प्रभुपाद का वैकुंठवास यत्न सार्थक करी कर परोपकार। आप भारतीय हो और अपना जीवन सफल करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा? करी कर परोपकार, परोपकार करना होगा। तो पाश्चात्य देशों से हम कई टेक्नोलॉजी है, लोन है और क्या क्या तो प्राप्त करते रहते हैं, उनके हमारे ऊपर उपकार है, तो हम क्या दे सकते हैं? हम भगवत गीता दे सकते हैं, हम उनको भगवान की मूर्तियां, भगवान का नाम, अपने देश की संस्कृति दे सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने केवल ये नहीं कहा कि आप दे दो इन बातों को, वैसे उन्होंने स्वयं विदेशियों को भगवान, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं ग्रंथ के रूप में, भगवान की गाय, भगवान के ग्रंथ संस्कृत भाषा, ये सारा दे दिया था। और वे कहते थे कि मैं सिंगल हैंडेडली, मैं अकेले ने प्रारंभ किया, लेकिन आप भारतीय सारे अगर हम इकट्ठे होते हैं और सारे मिल के अगर प्रयास करते हैं अपने संस्कृति और धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, तो कितना यश प्राप्त हो सकता है और उस वक्त हमारे देश का नाम रोशन हो सकता है, पूरा संसार हमारे देश के सामने झुक सकता है। ये प्रभुपाद का संदेश, आदेश, आवाहन हुआ करता था। प्रभुपाद हमारे मध्य में नहीं रहे, लेकिन उनके ग्रंथ है, उनके शिष्य है और उनका दिया हुआ प्रोत्साहन हमारे साथ है। तो आइए अब जो प्रभुपाद की जन्म शताब्दी हम लोग मनाने जा रहे हैं, आप सभी उपस्थित बंधुओं को, माताओं को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आइए आप प्रभुपाद के अनुयायी बनिए, प्रभुपाद अनुग बनिए और उन्हें दिए हुए मार्ग पर चलिए। भगवान ने तो गीता को उपदेश सुनाया, लेकिन किसी भक्त के सहायता से ही हम उस भगवत गीता को उपदेश को समझ सकते हैं। और वो भक्त है भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के, और अब उनके अनुयायी है, तो उनकी सहायता से आप भगवान के दिए हुए संदेश को समझिए और अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद के। तो इसके पहले
आशा है कि आप सबको ये नाटक पसंद आया है। ये नाटक जैसे आपको बताया गया था, इस संस्था का एक अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल है वृंदावन में, और वहां के भक्तों ने यह नाटक किया था। तो भक्ति वृंदा स्वामी प्रभुपाद जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने ये वैदिक संस्कृति की स्थापना विश्व के हर कोने में की है। प्रभुपाद जी आपके कुरुक्षेत्र के शहर में भी पधारे थे और प्रभुपाद जी ने कुरुक्षेत्र के नाम का प्रचार विश्व में हर कोने में किया है। आज विश्व के हर कोने में लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र भूमि कहाँ है और कुरुक्षेत्र भूमि का महत्व भी क्या है। तो प्रभुपाद जी भगवान के एक शुद्ध भक्त थे और चैतन्य महाप्रभु जी जो कि परम भगवान के अवतार हैं, जो कि अवतारित हुए थे लगभग 500 साल पहले, उन्होंने भविष्यवाणी दी थी कि एक दिन विश्व के कोने कोने में कृष्ण भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो प्रभुपाद जी आए थे इस भविष्यवाणी को सत्य बनाने के लिए। इस समय हमारी संस्था सारे विश्व में प्रभुपाद जी की शताब्दी की तैयारी कर रही है। अगले साल प्रभुपाद जी की शताब्दी मनाई जाएगी बहुत धूमधाम के साथ सारे विश्व में। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जो कार्य प्रभुपाद जी ने किया है वो इस देश के इतिहास में कोई नहीं कर पाया। ये वैदिक ज्ञान जो कि हमारे शास्त्रों में हजारों सालों से प्राप्त हो रहा है, एक प्रभुपाद जी थे जो इस ज्ञान को ले गए सारे विश्व में, और सारे विश्व में उन्होंने मंदिरों की स्थापना की। प्रभुपाद जी ने लगभग 90 ग्रंथों का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, जिनका आगे अनुवाद लगभग विश्व की हर अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हो चुका है। और आज इस्कॉन संस्था के 400 से अधिक केंद्र हैं सारे विश्व में, और जिन ग्रंथों का अनुवाद प्रभुपाद जी ने किया है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत इत्यादि, इनको सारे विश्व में लोग पढ़ रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि प्रभुपाद जी भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, और उन्होंने भगवान की वाणी को किसी रूप से भी बदला नहीं। जैसे कि आप में से जिन भक्तों ने भगवद गीता प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद की हुई भगवद गीता अगर पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि उसका नाम है भगवद गीता यथारूप। तो कई बार लोग पूछते हैं कि स्वामी जी इस गीता और दूसरी गीताओं में क्या अंतर है? तो अंतर यह है कि इस अनुवाद में प्रभुपाद जी ने अपने विचारों को नहीं जोड़ा। जिस विचारधारा से अर्जुन ने भगवान के संदेश को स्वीकार किया, उसी विचारधारा के साथ प्रभुपाद जी ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया है। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि इन ग्रंथों के द्वारा लाखों भक्त सारे विश्व में बन रहे हैं। प्रभुपाद जी को बहुत दुख होता था ये देखकर कि हमारे भारतीय लोग अपनी संस्कृति की महिमा को समझने की बजाय केवल भौतिक विषय में ही रुचि ले रहे हैं, और यही सोचते हैं कि जो भी पश्चिम देश की आदत है वह हमें अपना लेना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि भारतीय लोग अपनी असली संपत्ति को नहीं पहचान रहे। चैतन्य महाप्रभु जी, जिनका हमने अभी वर्णन किया था, उनका तो ये आदेश था कि जो व्यक्ति भी भारत देश में जन्म ले उसे अपना उद्धार भी करना चाहिए और दूसरों का उद्धार भी करना चाहिए। आज हम सब केवल भौतिकता में ही रुचि ले रहे हैं। सारे विश्व के लोग सोच रहे हैं भारत में धंधा करना अच्छा है, अच्छी कमाई है, जो भी माल बनाओ सब खरीदने लग जाते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि सारे लोग टेलीविजन के साथ जुड़ जाते हैं और आध्यात्मिकता में बहुत कम लोग रुचि ले रहे हैं। तो प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि भारतीय लोग इस ज्ञान को समझने का प्रयास करें। एक तरफ से तो ये सुनने में आता है कि ये सब ज्ञान तो हमारे पास है, बचपन से ही हम रामायण महाभारत इत्यादि की कथाएं सुनते आए हैं। पर अफसोस की बात यह है कि हम इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पा रहे, और आज हम देख रहे हैं अनेक समस्या, और ये समस्या जो है केवल बढ़ते ही जा रही हैं। तो प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सारे विश्व में इस संस्कृति की स्थापना की। आज अब विश्व के किसी कोने में भी चले जाओ, वहां आप देखोगे कि हरे कृष्णा के भक्त होंगे, भाई ये जो पुस्तकें हैं उनके उनका लोग उनको लोग पढ़ रहे हैं, विश्व की लगभग हर प्रसिद्ध महाविद्यालय में भी इन ग्रंथों को आज आप प्राप्त कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी ने जो चमत्कार दिखाया है वो इतिहास में कोई नहीं दिखा पाया। एक बार किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आपको जादू कर सकते हो, क्योंकि हमारे देश में हम ये सोचते हैं कि अगर कोई स्वामी है तो जादू भी करना दिखा जानता होगा और ज्योति का ज्ञान भी होगा उसे। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कोई जादू मुझे नहीं पता, पर एक जादू मैंने जरूर किया है। क्या है वो जादू? हजारों मलेच्छों को मैंने ब्राह्मण बना दिया है। तो वो व्यक्ति जो कि बचपन से ही हर पाप का कार्य करते आ रहे थे, आज वो ब्राह्मण बन गए हैं। सुबह 3:30 बजे जागते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, कोई चाय कॉफी नहीं। भारत में जब हम हमारे मित्रों से निवेदन करते हैं कि चाय कॉफी छोड़ दो तो वो कहते हैं स्वामी जी ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये छोड़ना तो कठिन है, असंभव है। पर ये हरि नाम के जादू के द्वारा वो व्यक्ति जो बचपन से ही पाप के कार्य में लीन थे, आज उन्हें चाय कॉफी नशे की चीज शराब सिगरेट प्राइसियों से संबंध ये सब छोड़ दिया। यह है ये हरे नाम का जादू। तो कृष्णा शक्ति बिना नाहे तारा प्रवर्तना, चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में कहा गया है कि कृष्ण भगवान के आशीर्वाद के बिना कोई प्रचार में सफलता प्रचार प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे शुद्ध भक्त थे जिन्होंने संस्कृति का वितरण किया सारे विश्व में, और हम सब भारतीयों का यह कर्तव्य बनता है कि हम प्रभुपाद जी की जो शिक्षा जो उनके ग्रंथों में हम प्राप्त कर सकते हैं उसका हम लाभ उठाएं। एक महान संत ने कहा है कि जो असली भक्त है भगवान का उसे तो हम हमेशा उसकी वाणी के द्वारा जानते हैं सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी की वाणी जो कि उन्होंने इन ग्रंथों में दी है उसका लाभ आज सारे विश्व के लोग उठा रहे हैं। आप सबने कल रथ यात्रा में देखा कि लगभग 300 विदेशी भक्त आपके शहर में आए थे और अनेक देशों के ये भक्त थे। कैसे ये लोग ये सब त्याग रहे हैं? कई बार हमारे भारतीय लोग पूछते हैं कि क्या कारण है कि ये लोग भक्ति में इतनी रुचि ले रहे हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि वो समझ बैठे हैं क्या कि मानव जीवन का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य जरूर है, और भौतिक कार्यों के द्वारा असली सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब वो इन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि इन ग्रंथों में हर प्रश्न का उत्तर है, हर समस्या का हल है। तो आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप प्रभुपाद जी को समझने का प्रयास करो। प्रभुपाद जी ने क्या कार्य किया है ये तो भारतीय लोग देखकर खुश होते हैं कि उन्होंने सारे विश्व में ये वैदिक धर्म की स्थापना कर दी है, पर अगर आप इनके ग्रंथों को पढ़ोगे तो आप सब ज्यादा प्रभावित होगे, और फिर सब आप सब में ये भावना उठेगी कि आपको भी इस शिक्षा को स्वीकार करना चाहिए, आपको भी इस शिक्षा के आधार पर जीवन को चलाना चाहिए। तो अगर आप प्रभुपाद जी को समझना चाहते हो तो उनके ग्रंथों को जरूर पढ़ो। और प्रभुपाद जी का यही आदेश था हर व्यक्ति के साथ कि कृष्ण भगवान का नाम लो। एक समय प्रभुपाद जी एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था में थे तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वन गॉड भगवान श्री कृष्ण, एक मंत्र हरे कृष्ण मंत्र और एक शास्त्र भगवद गीता।